آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں فہیم احمد۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی جنوب، خاص طور پر افریقہ کی تشویش کو ترجیح دینے کے لیے کہا ہے۔ جناب مودی نے G7 سربراہ کانفرنس سے الگ اٹلی اور جاپان کے وزرائے اعظم سے دو طرفہ ملاقاتیں کی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اعلی تعلیمی اداروں کے لیے فیس واپسی کی نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ میں اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ ہو کر یہ 655.81 کروڑ 70 لاکھ امریکی ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ 18th ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول آج سے ممبئی میں شروع ہو رہا ہے۔ اور ICC مردوں کے T20 عالمی کپ کرکٹ میں آج شام فلوریڈا میں گروپ مرحلے کے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ کینیڈا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی جنوب، خاص طور پر افریقہ کی تشویش کو ترجیح دینے کے لیے کہا ہے۔ کل اٹلی کے اپولیا خطے میں G7 سربراہ کانفرنس میں آؤٹ ریچ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یہ بھارت کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ افریقی یونین کو بھارت کی G20 صدارت کے دوران G20 کے ایک مستقل رکن کی حیثیت دی گئی۔ جناب مودی نے بھارت کی توانائی کی ترسیل کے راستے کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ کار دستیابی، رسائی، کم خرچ اور تسلیم شدگی پر مبنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت 2070 تک مضر صحت گیسوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنے کے مقصد کی جانب کام کر رہا ہے۔ بھارت کے مشن لائف کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ وہ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر ان کی طرف سے شروع کی گئی درختکاری کی مہم پلان فار مدر میں حصہ لیں اور اسے ذاتی دلچسپی اور عالمی ذمہ داری کے تحت ایک عوامی تحریک کی شکل دیں۔ بھارت کے AI فار آل کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اس ٹیکنالوجی کا مقصد سبھی کی ترقی اور خوشحالی ہونا چاہیے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ بھارت AI کے لیے عالمی شراکت داری کے ایک بانی رکن کے طور پر بین الاقوامی اشتراک کو فروغ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے گروپ کو اس کی 50th سالگرہ پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ بنی نو انسان کی تاریخ میں دنیا کے سب سے بڑے جمہوری نظام کے تحت خود کو ایک بار پھر منتخب کیے جانے کے بعد اس سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کامیاب ٹیکنالوجی کے لیے اس ٹیکنالوجی کو انسانیت پر مرکوز نظریے کے تحت لانا ہوگا۔ انہوں نے عوامی خدمات کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں بھارت کی کامیابی کا ذکر کیا۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے اپنے افتتاحی کلمات میں کہا کہ وہ G7 اور اٹلی کی صدارت کی طرف سے ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ اس بیانیے کو کبھی تسلیم نہیں کریں گی جس میں مغرب کو باقی دنیا کے برخلاف پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی چیلنجوں سے اسی وقت نپٹا جا سکتا ہے کہ جب ممالک ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے یکساں طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ یہ آؤٹ ریچ جلسہ ان چیلنجوں کے نام ہے جو کافی متاثر کن ہیں اور جن میں مصنوعی ذہانت، AI، توانائی، افریقہ اور بحیرہ روم خطے کے ممالک بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اٹلی کے خطے اپولیا میں G7 سربراہ کانفرنس سے الگ اٹلی کی اپنی ہم منصب جیورجیا میلونی سے دو طرفہ ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور دفاعی صنعت کے شعبے میں اشتراک کو مزید فروغ دینے کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے بھارت اٹلی دفاعی شراکت داری کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے صاف ستھری توانائی، مصنوعات سازی، خلا، سائنس اور ٹیکنالوجی، ٹیلی مواصلات، AI اور اہم معدنیات کے میدانوں میں تجارتی تعلقات میں اضافے کے لیے کہا کہ تاکہ حالات سے مطابقت رکھنے والی سپلائی چین تشکیل دی جا سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے صنعتی حقوق املاک سے متعلق طے کیے گئے ایک مفاہمت نامے کا خیر مقدم کیا جس میں پیٹنٹس، ڈیزائن اور ٹریڈ مارک سے متعلق تعاون کے لیے ایک خاکہ فراہم کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے توانائی کی ترسیل میں تعاون کے لیے آمادگی کے دستاویز پر دستخط کیے جانے کا خیر مقدم کیا جس سے صاف ستھری اور ماحول کے لیے سازگار توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی بات چیت کی۔ उन्होंने आलमी सतह पर ताउन नीज कसीर मुल्की इकदामात को मुस्तहकम बनाने से इत्तेफाक किया, जिनमें भारत मशरिक उस्ता मशरिक यूरोप इकतसादी राहदारी भी शामिल है। इटली की वजीर आजम ने जनाब मोदी को लगातार तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने माइग्रेशन और लोगों की नकलो हरकत से मुतालिक मुआहदे पर जल्द अज जल्द अमल दरामद के लिए कहा। इससे पेशावर हुनरमंद और नीम हुनरमंद कारकुनों, तलबा और मुहक्कीकीन की आमदोरफ्त में सहूलत पैदा होगी। इससे पहले दिन में जनाब मोदी ने बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक, फ्रांस के वजीर आजम इमैनुअल मखां और यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी दो तरफा मुलाकातें की थीं। वजीर आजम ने सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग बहुत से आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात की, जिनमें अमरीकी सदर जो बाइडन भी शामिल हैं। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका दुनिया की और ज्यादा भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने उर्दुन के शाह अब्दुल्ला दोयम से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत उर्दुन से अपने मजबूत ताल्लुकात की कद्र करता है। उन्होंने पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा कि वो लोगों की खिदमत और कुर्रे अर्ज की बेहतरी के तहीं पोप के अज़्म को सराहते हैं। वजीर आजम मोदी ने कॉन्फ्रेंस से अलग अकवाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेश, ब्राजील के सदर लूला दा सिल्वा, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इटली के अपोलिया में जारी G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के पसमंजर में जापान के वजीर आजम फोमियो किशिदा से दो तरफा मुलाकात की। इस दरमियान वजीर आजम मोदी ने कहा कि उनकी तीसरी मुद्दत कार के दौरान जापान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को तरजीह दी जाती रहेगी। भारत और जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और भारत जापान सनअती मुसाबिकती साझेदारी समेत कई अहम शोबों में इश्तराक कर रहे हैं। दोनों वज़राए आज़म के दरमियान हुई इस मुलाकात से दोनों मुल्कों के दरमियान जारी इश्तराक के कामों का जायजा लेने के मौके फराहम हुए हैं। आला तालीमी इदारों को दाखिले की मनसूखी या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में मुंतकली की सूरत में फीस की वो पूरी रकम वापस करना होगी जो उन्होंने इस साल सितंबर तक के दाखिलों के लिए हासिल की है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ने यह ऐलान 2024-25 के तालीमी साल की नई फीस रिफंड पॉलिसी में किया है। यह फैसला तलबा और उनके वालदैन की तरफ से इन शिकायतों को दूर करने के मकसद से किया गया है कि उन्हें दाखिले की मनसूखी पर फीस वापस नहीं की जाती। इस पॉलिसी का इतलाक मरकजी या रियासती कानून के तहत उन सभी आला तालीमी इदारों पर होगा जो UGC की तरफ से तस्लीम शुदा हैं या ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या ये दाखिलों से मुतालिक मशवरों में शामिल तंजीमें हैं। आला तालीमी जब्तेकार इदारे ने यह भी कहा कि इस साल 30 सितंबर के बाद और 31 अक्टूबर तक फीस की यह रकम प्रोसेसिंग फीस के तौर पर कटौती के साथ वापस की जा सकती है और कटौती की यह रकम 1,000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। UGC ने यह भी कहा है कि उन दाखिलों पर जो 31 अक्टूबर के बाद हुए हैं उन पर अक्टूबर 2018 के जब्ते लागू होंगे। इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारे 2018 के नोटिफिकेशन में बयान किए गए जब्तों के तहत सजावार होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राजा परब की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर वो सकाफती प्रोग्रामों से महफूज हुई जिनमें राजा गीत और मयूर भंछा रक्स, संबलपुरी रक्स और कर्मा रक्स भी शामिल हैं। ये पहला मौका है जब राजा परब की तकरीब राष्ट्रपति भवन में मनाई गई। इस तकरीब में उड़ीसा की सकाफत और तर्ज हयात की झलकियां पेश की गईं। ये 3 रोजा सकाफती त्यौहार मानसून की आमद पर मनाया जाता है। भारत के गैर मुल्की जर मुबादला के जखीरों में 7 जून को खत्म होने वाले हफ्ते में 4,30,70,00,00,000 अमरीकी डॉलर का अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। अब ये जर मुबादला 655,81,70,00,000,00,000 का हो गया है। इन जखीरों में पिछले हफ्ते 4,83,70,00,00,000 का इजाफा होकर ये 651,51,00,00,000 अमरीकी डॉलर हो गए थे। मुंबई में आज 7 रोजा 18वें मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल MIFF 2024 का आगाज हो रहा है। इसका आगाज चार्ली हैमिल्टन जेम्स की हिदायतकारी वाली फिल्म बिली एंड मोली एंड ऑटर लव स्टोरी के भारतीय प्रीमियर से होगा। इस साल के MIFF में 61 जुबानों में 59 मुल्कों की 314 फिल्में दिखाई जाएंगी।
मुंबई में आज नेशनल ज्योग्राफी की दस्तावेजी फिल्म बिली एंड मोली एंड ऑटर लव स्टोरी की नुमाइश के साथ 18वें मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल मिफ का आगाज हो रहा है। साथ ही इस फिल्म की नुमाइश दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में होगी। मुसाबिकती जुमरे के लिए 1018 की रिकॉर्ड तादाद में फिल्मों की एंट्रीज हुई हैं। बैन अल-अक़वामी और कौमी मुसाबिकती जुमरों के लिए मारूफ फिल्म माहिरीन पर मुश्तमिल 3 सिलेक्शन कमेटियों के जरिए 118 फिल्में मुंतखब की गई हैं। इस साल के मिफ में 61 जबानों में 59 मुल्कों की 314 फिल्मों की नुमाइश होगी। इनमें 8 आलमी प्रीमियर्स, 5 बैन अल-अक़वामी प्रीमियर्स, 18 एशिया प्रीमियर्स और 21 भारतीय प्रीमियर्स शामिल हैं। इस साल के फेस्टिवल में पहली बार दस्तावेजी फिल्म बाजार मुतारिफ कराया जा रहा है। मारूफ फिल्मसाज 25 से ज्यादा मास्टर क्लास, पैनल मुबाहिसे और मखसूस मौजूदात पर ओपन फोरम हिस्सा लेंगे। मुंबई से स्वीटी जैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबार्ड की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा आमों का मेला शुरू हो गया है। इस मेले में कुदरती तौर पर उगाए गए आमों की नुमाइश होगी, जहां 2 दर्जन से ज्यादा आमों की किस्में पेश की जा रही हैं। ये मेला 18 जून तक जारी रहेगा। मजीद तफसील हमारे नमानिगार से।
आमों के इस मेले में आमों की मुख्तलिफ अकसाम की नुमाइश की जा रही है, जिनमें जरदालू, अम्रपाली, तोतापरी, केसर, राजापुरी और सुंदरजा शामिल हैं, जो कि मध्य प्रदेश की पहचान बन गए हैं। नाबार्ड भोपाल के डिप्टी जनरल मैनेजर अविनाश सिवालकर ने बताया कि आमों के इस मेले में रियासत के मुख्तलिफ जिलों के किसान मुख्तलिफ किस्म के आमों के साथ हिस्सा लेने पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश का सुंदरजा आम उन लोगों के लिए है जो ज़ियाबतीस का शिकार हैं। इस आम में शक्कर की मकदार 5% से भी कम होती है। इस आम को अपनी खुशबू और खसूसियात की वजह से GI टैग भी मिल चुका है। इस मेले में नूर जहां आम भी खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 2000 रूपये किलो है। इस किस्म के एक आम का वजन 2 से 4 किलो होता है और ये मुल्क में सिर्फ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में ही उगाए जाते हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं जमीर रजवी।
भारत समेत दुनिया भर के 20 लाख से ज्यादा लोग आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा करेंगे। 5 रोजा मनासिक हज का आगाज करते हुए आजमीन हज कल खेमों के शहर मीना में जमा हुए। इन लोगों ने आज सबसे पहले फजर की नमाज अदा की, जिसके बाद ये लोग हज के असल रुकन की अदायगी के लिए अरफात के मैदान रवाना हो जाएंगे। मर्दों के ICC T20 आलमी कप क्रिकेट में कल अमरीका और आयरलैंड के दरमियान मैच बारिश की वजह से रद्द होने के सबब अमरीका सुपर 8 मरहले में पहुंच गया है। आज फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रॉवर्ड पार्क स्टेडियम में भारत का मुकाबला अपने आखिरी ग्रुप मरहले के मैच में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे कनाडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
शुक्रिया फहीम। राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने इटली में जारी G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम मोदी की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की खबर को पहले सफे पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वजीर आजम ने फ्रांस, इंग्लैंड और यूक्रेन के सरबराहान मुमलकत से मुलाकात की। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सऊदी अरब में मनासिक हज के आगाज की खबर को पहले सफे की शहसुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि आजिमीन हज खाने काबा में नमाज फजर अदा करने के बाद एहराम बांधकर मीना पहुंच गए हैं। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा आज होगा।
आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी जनूब, खासतौर पर अफ्रीका की तशवीश को तरजीह देने के लिए कहा है। जनाब मोदी ने G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अलग इटली और जापान के वजराए आजम से 2 तरफा मुलाकातें की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आला तालीमी इदारों के लिए फीस वापसी की नई पॉलिसी का ऐलान किया है। भारत के गैर मुल्की जर मुबादला में अब तक का सबसे ज्यादा इजाफा होकर ये 655 अरब 81 करोड़ 70 लाख अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। 18वां मुंबई बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। और ICC मर्दों के T20 आलमी कप क्रिकेट में आज शाम फ्लोरिडा में ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।